अगले कुछ दिन शांति से गुजरे थे, हालांकि वो शांति नाम की ही थी। सीधे से रूपाली जी कुछ कह नहीं रही थी, पर घुमा फिरा कर ताने मारने में कमी नहीं आई थी। उस दिन जो हुआ था उसके कारण वो नाराज चल रही थी, और गजब ही नाराज थी। बातचीत बंद थी, पर ताने सदाबहार गानों की तरह चलते ही जा रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं का बहिष्कार कर रखा था, पर सब काम उन्हीं से करवाती थी। वो खाने को बुलाती तो मुंह ऐंठते हुए चार बातें सुना देती, और बाद में उन्हीं का बनाया खाकर जूठे बर्तन सिंक में सजा देती। उन्हें सुनाने का और मौका भी मिल गया था बीते कुछ दिनों से। अंतरा की तबीयत खराब हो गई थी। अचानक ही उसे पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई थी। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। काम के साथ उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आहाना पर आ गई थी, और रूपाली जी उसकी बीमारी को भी आराम करने का बहाना कहकर तंज कसने लगी थी। अक्षय की दी दवाई से उसे कुछ आराम मिलता था, पर दो तीन दिन में भी जब वो ठीक नहीं हुई, पेट दर्द लगा ही रहा, तो आज अक्षय के कहने पर अन्वय उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गया था, ताकि उसकी जांच हो और पता चले कि उसे ये बार बार पेट दर्द की समस्या क्यों हो रही है। रोज की तरह स्कूल से लौटने के बाद आज भी आहाना अंतरा को ढूंढने लगी, पर आज उसे कहीं नहीं दिखी। आखिर में उसने रूपाली जी से पूछ ही लिया, मम्मी जी, अंतरा कहीं बाहर गई है क्या? तुम्हारी बहन की कामचोरी का बहाना आज खत्म होने वाला है। हर दूसरे पहर पेट दर्द का बहाना करके बिस्तर पर गिर जाती है, पर आज जब डॉक्टर चेक करेगा तो सब पता चल जाएगा कि कितनी बीमार है और कितना झूठा नाटक करके सबको अपने आगे पीछे लगाए रखती है। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार जहर ही उगला था, पर आहाना जो जानना चाहती थी वो जान गई थी। अगले ही पल उसने अंतरा को कॉल लगा दिया, पर उसने फोन नहीं उठाया। उसके घर लौटने पर बात करने का सोचकर वो कमरे में चली गई। फ्रेश होकर कपड़े बदलकर नीचे पहुंची। ठीक उसी वक्त अन्वय के साथ अंतरा ने घर में कदम रखा था। परेशान सी आहाना उनके पास पहुंच गई। अन्वय, क्या कहा डॉक्टर ने? बार बार पेट दर्द होने की क्या वजह है? अंतरा ठीक तो है? चिंता वाली कोई बात तो नहीं? आहाना ने बेचैन निगाहों से दोनों को देखते हुए एक सांस में कई सवाल कर डाले थे, और परेशान सी बड़ी ही बेसब्री से जवाब का इंतजार करने लगी थी। भाभी, पहले आप जरा सांस ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इतना परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। आहाना को व्याकुल देखकर अन्वय ने उसे शांत करने की कोशिश की थी। इतने में अंतरा ने चिंता भले स्वर में फिर सवाल किया, मतलब अंतरा ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं, पर अगर कोई बड़ी बात नहीं तो उसे बार बार पेट दर्द क्यों होता है? पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। वो अब भी परेशान थी। आखिर बात उसकी बहन की थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। अन्वय ने अपनी गाहें अंतरा की ओर घुमाई और भौहें उचकाते हुए सवाल किया, बता दूं या तुम बताओगी? मैं बताऊंगी अपनी जीजी को, अंतरा ने फट से जवाब दिया। फिर आहाना की हथेलियों को थामते हुए हौले से मुस्कुराते हुए बोली, जीजी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दवाई भी दी है और कहा है कि ये नॉर्मल है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अंतरा, तुम्हें हुआ क्या है ये तो बताओ? आहाना ने उसके चुप रहने पर परेशान निगाहों से उसे देखते हुए व्याकुलता से सवाल किया था। उसका सवाल सुनकर अंतरा ने तिरछी नजरों से अन्वय को देखा, जो प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था, और उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अंतरा के लबों पर भी मीठी सी सौम्य मुस्कान बिखर गई, और खुशी चेहरे पर नूर बनकर बिखर गई। उसने निगाहें आहाना की ओर घुमाई और खनकते स्वर में बोली, जीजी, आज मासी बनने वाली है और बड़ी मम्मी भी। अंतरा की बात सुनकर आहाना बुरी तरह चौंक गई थी। अचानक मिली इस खुशखबरी पर उसका विश्वास करना मुश्किल हो गया था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखा और हैरानगी से सवाल किया, क्या कहा तुमने? हम मासी बनने वाले हैं, मतलब तुम माँ बनने वाली हो? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप मासी माँ बनने वाली हैं, अंतरा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी थी, और भावुक होकर आहाना ने उसे अपने गले से लगा लिया था। इस वक्त वो कितनी खुश थी उसे शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अभी दोनों बहनें इस खुशी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थीं कि रूपाली जी, जो यहीं कान लगाए बैठी थीं, दौड़ी दौड़ी उनके पास पहुंच गईं। हमारा पोता पोती आने वाला है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? हम सच में दादी बनने वाले हैं। वाह, दादी बनने की खबर सुनते ही वो जैसे अपनी सारी नाराजगी ही भूल गई थी। अन्वय ने भी अभी के लिए अपनी शिकायतों को दूर झटक दिया था और हामी भरते हुए मुस्कुरा दिया था। हाँ मम्मी, आप सच में दादी बनने वाली हैं। बहुत चाहत थी ना आपको अपने पोते पोती की, अब आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। अब तो शायद आपको अंतरा से जो भी परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी, और आप भाभी को भी सुनाना बंद कर देंगी। आखिरी की बात सुनकर रूपाली जी के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। उन्होंने तिरछी निगाहों से आहाना को घूरा था, जिसके चेहरे पर दुख व उदासी के बादल घिराए थे। उन्होंने अन्वय की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने अंतरा की नज़र उतारी, फिर उसे अभी किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर दिया था कि अभी नज़र लगने का डर है। कुछ हिदायतें भी देने लगी थीं, जिसमें सबसे पहली थी कि अभी बाहर नहीं जाएगी। साथ ही आहाना को ताना भी मार दिया था कि उसकी तरह उनकी बात ना मानकर अगर बाहर जाती रही तो फिर कुछ अशुभ घटित हो जाएगा। अंतरा ने यह सुनकर गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। अन्वय के चेहरे पर भी सख्त भाव उभर आए थे और आहाना की आंखों में नमी तैर गई थी। जिस खबर को सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, रूपाली जी ने उस खुशखबरी के जरिए उसके पुराने जख्मों को कुरेदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रात को जब अभिजीत जी और अक्षय आए तो उन्हें भी ये गुड न्यूज़ सुनाई गई और दोनों ही बहुत खुश थे। पर अंतरा और आहाना दोनों की खुशी पर रूपाली जी नाम का ग्रहण लग चुका था। अक्षय आहाना की उस मुस्कुराहट के पीछे की उदासी भांप गया था। डिनर के बाद जब आहाना रसोई में काम करने गई तो उसके पीछे पीछे अक्षय भी चला आया था। अनु, आप उदास हैं? आज तो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है हमें, फिर आपके चेहरे पर उदासी और दुख क्यों झलक रहा है? मम्मी ने फिर बच्चे के लिए कुछ कहा क्या? अक्षय ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी उदासी की वजह जाननी चाही थी और साथ ही अपने हिसाब से उस संभावना को भी व्यक्त किया था जिसके होने का शक उसे था। आहाना, जो शाम से अपना दुख, दर्द, उदासी अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश किए जा रही थी, अक्षय का प्रेम भरा स्पर्श और अपनेपन से भरपूर सानिध्य पाकर खुद पर से संयम खो बैठी थी। आखिर कब तक अपनी भावनाओं को छुपाती रहती? दर्द में थी वो और अब वो दर्द उससे सहन नहीं हो रहा था। आहाना के लब खामोश रहे थे। शायद उसके दिल के हाल को बयां करने के लिए उचित शब्दों का अभाव था उसके पास, पर उसे जरूरत थी इस सानिध्य, प्यार और अक्षय के सहारे की। हाथ में पकड़े बर्तन सिंक में रखते हुए उसने अक्षय के सीने से अपनी पीठ टिका दी और अपनी आंखों को यूं मूंद लिया जैसे अपने दिल में समुद्र की लहरों से उफान मारती भावनाओं को खुद में समेट रही हो। आहाना की खामोशी अक्षय को बेचैन कर गई थी और उसके चेहरे पर चिंता भरे भाव उभर आए थे। अनु, आप ठीक हैं? यहाँ अक्षय ने सवाल किया था और वहाँ आहाना की झुकी पलकों के नीचे से दर्द की एक बूंद फिसलकर उसके गालों से सरकती हुई फर्श पर बिखर गई थी, बिल्कुल वैसे जैसे सालों पहले उसकी खुशियाँ बिखर गई थीं।